नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लद्दाख में टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान अचानक आई बाढ़ में सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। वार्षिक अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में आगे बढ़ा। और क्रिकेट में आसाम बारबाडोस में T20 विश्व कप फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लद्दाख क्षेत्र में कल रात टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान 5 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। टैंक जब नदी पार कर रहे थे तो अचानक जल का प्रवाह बढ़ जाने से ये दुर्घटना हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में टैंक युद्ध का एक अभ्यास चल रहा था। आधिकारिक वक्तव्य में लेह के रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान यह दुर्घटना हुई है। पूर्वी लद्दाख के सासे ब्रांगसा के निकट श्योक नदी में अचानक जल का स्तर बढ़ जाने के कारण सेना का एक T-72 टैंक फंस गया। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा लेकिन जल के तेज प्रवाह के कारण बचाव अभियान सफल नहीं रहा। सेना ने 5 वीर सैनिकों के बलिदान पर दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के वीर गति प्राप्त करने पर दुख व्यक्त किया है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देशवासी वीर सैनिकों की राष्ट्र के प्रति अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश आपदा प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपना रहा है। पर्वतारोहण अभियान विजय का ध्वजारोहण समारोह में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को हमेशा किसी तरह की आपदा में किसी के हताहत न होने का उद्देश्य रखना चाहिए।
न केवल देश, दुनिया भर में कहीं पर भी आपदा आती है, लोग एनडीआरएफ की ओर देखते हैं और कितने भी विपरीत सरकमटेंसीज हो, एनडीआरएफ के ड्रेस में जवान अगर वहां खड़ा है तो आपदा में फंसे हैं उनका भी हौसला बढ़ जाता है। जिस प्रकार से एक पर्वत पर विजय पाने के लिए 35 जवानों ने पल पल जागरूकता के साथ अपने आप को लक्ष्य के साथ जोड़कर सिद्धि प्राप्त की, इसी प्रकार से हमारे बल को जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य के साथ हमने जोड़ना चाहिए।
गृहमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ का आधुनिकीकरण करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
इतने विशाल भूभाग वाले देश में हर जगह पे जवानों की उपस्थिति करा देना और आपदा के आकलन के लिए एडवांस में ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और लोगों को आगे ही बचा लिया जाए, इसके लिए एनडीएमए और एनडीआरएफ का एक बहुत विजयी गठजोड़ बनाने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है।
ध्वजारोहण समारोह में श्री शाह ने घोषणा की कि सरकार ने एनडीआरएफ के जवानों के लिए जोखिम और दुर्गम क्षेत्र भत्ते को स्वीकृति दी है। पर्वतारोहण अभियान की सफलता पर टीम और पूरे एनडीआरएफ को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि इस प्रकार का कठिन अभियान एक जवान और बल दोनों की कुशलता को बढ़ाता है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद उपस्थित थे। पर्वतारोहण अभियान विजय में हिमाचल प्रदेश के 21,625 फुट ऊंचे माउंट मणिरंग को एनडीआरएफ के जवानों ने फतह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। ये परीक्षा इस महीने की 18 तारीख को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट अब 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को होगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की थी कि महिलाएं राजभवन कोलकाता जाने से डरती हैं। मुकदमा दायर करने से पहले राज्यपाल बोस ने इन टिप्पणियों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और निंदनीय धारणाएं पैदा न करें। मुकदमा दायर होने के बाद भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी राज्यपाल के समर्थन में आ गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नीट यूजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में अहमदाबाद और गोधरा जिलों सहित गुजरात में 7 अलग अलग स्थानों पर तलाशी की जा रही है। इस मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रतिमाह लगभग 21 करोड़ 70 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 41 लाख 40 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। नागालैंड में 3 नगर पालिकाओं और 21 नगर परिषदों के लिए हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। राज्य के 10 जिलों में 16 मतगणना हॉल और 125 मतगणना टेबल की व्यवस्था की गई है। 33% महिला आरक्षण के साथ 26 जून 2024 को ये चुनाव कराया गया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि युग युगीन भारत संग्रहालय देश की यात्रा का प्रदर्शन करेगा। भारत मंडपम में आयोजित युग युगीन भारत संग्रहालय पर भारत फ्रांस की सहयोगी क्षमतावर्धन कार्यशाला के अंतिम दिन भागीदारी करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संग्रहालय देश का बीता हुआ कल, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का प्रदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार 3री बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। ये आयोजन श्री नायडू के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद के गाची बावली के अन्वाया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में कई धार्मिक गुरुओं ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के कथन के प्रति कड़ी आपत्ति जताई है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण और धर्मांतरण रोधी कानून में वृद्धि चिंताजनक है। एक रिपोर्ट। अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती और अजमेर दरगाह के अध्यात्मिक गुरु के उत्तराधिकारी ने इस रिपोर्ट को झूठा, फर्जी और मनगढ़ंत कहा है। अजमेर चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने यह कहते हुए इस रिपोर्ट को खारिज किया है कि आंतरिक मामलों के निपटारे में हमारा संविधान, कानून और व्यवस्था तथा बुनियादी ढांचा सक्षम है। केंद्रीय गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष निर्मल सिंह ने कहा कि भारत स्वर्ण युग से गुजर रहा है। आज संसद में हर धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व है। भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय समन्वयक महर्षि भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील महाराज ने रिपोर्ट की निंदा करते हुए कहा कि धर्म या समुदाय के बावजूद भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी लोग सुरक्षित हैं। इस रिपोर्ट में विश्व भर में विशेष धार्मिक समूहों के विरुद्ध बढ़ती कट्टरता को लेकर भी जिक्र किया गया है। भारत ने अमरीकी विदेश विभाग की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस रिपोर्ट में भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ की कमी है। समाचार कक्ष से जया भारती।
कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज सुबह औपचारिक रूप से शुरू हुई। 52 दिवसीय यात्रा इस वर्ष 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समाप्त होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बम बम बोले हर हर महादेव, भूखे को अन्न प्यासे को पानी के जयघोष के बीच श्री अमरनाथ जी की यात्रियों का दूसरा जत्था कश्मीर घाटी में प्रवेश कर चुका है। अभी तक प्राप्त सूचना के मुताबिक 3000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में आज दर्शन किए हैं। दोनों यात्रा मार्गों पर आज यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि आज लगभग 7 से 8 हजार यात्री प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। हर साल होने वाली अमरनाथ जी की यात्रा के मार्ग हैं अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवन पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटा लेकिन खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग है। इस बीच इस यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजा से जुड़ी ये यात्रा भगवान शिव के भक्तों में अपार ऊर्जा का संचार करती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारतीय संस्कृति की परम्परा और निरंतरता का शाश्वत प्रतीक है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के शेष भागों में आगे बढ़ गया है। विभाग ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम बारबाडोस में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पिछले 10 साल के जीत के सूखे को खत्म कर विश्व चैंपियन बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। फाइनल तक के अभियान में दोनों टीमें अजेय रही है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट के कई फाइनल मैचों के अनुभव को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी होगा। दक्षिण अफ्रीका 1998 के बाद पहली बार ICC के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। टूर्नामेंट में भारत का अभियान पिछले साल वनडे विश्व कप के समान ही रहा है, जहां वे फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया था। इधर दक्षिण अफ्रीका की टीम चोकर्स के टैग को पीछे छोड़कर फाइनल में पहुंची है। और
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख में टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान अचानक आई बाढ़ में सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट, CSIR, UGC नेट, NCET परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। वार्षिक अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में आगे बढ़ा। और क्रिकेट में आज शाम बारबाडोस में T20 विश्व कप फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।